بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لیسن نمبر 13 کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس میں آیت نمبر 63 سے 73 تک میں ہم تین واقعات کو دیکھیں گے. پہلے آیت 62 دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آج کے سبق کا آپ کو پہلے پورا بتاؤں گی انشاءاللہ، پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا سمجھنا. پہلے پچھلی آیت دیکھ لیجئے، تھوڑا سا اس کے بارے میں دوبارہ سے میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. 62 آیت نکالے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا تھا، پہلے ہم کر چکے ہیں، دوبارہ سے دیکھ لیں. ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، نصرانی ہوئے، صابی ہوئے. صابی کون لوگ تھے؟ وہ عراق میں رہتے تھے وہ لوگ، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، لیکن ان کے ہاں بہت بگاڑ آ گیا. اور جیسے باقی لوگ مشرکین مکہ بھی تو کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین میں سے، لیکن ظاہر ہے آہستہ آہستہ جب بگاڑ آتا جاتا ہے تو پھر ڈفرینٹ اور چیزوں کو پوجنے لگتے ہیں، تو یہ بھی ستاروں کو پوجنے لگے تھے پھر. اچھا، اب ہم نے جیسے ظاہر الفاظ دیکھے تو ہمیں ایسے لگا کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی جو اللہ پر، آخرت پر اور نیک کام کرے گا، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بہت چیریٹی ورک فلاں کرتا ہے، وہ تو جنت میں جائے گا. تو ہاں، بس گاڈ پہ اس کا ایمان ہے اور ڈے آف ججمنٹ ایک ہے، وہ تو اینڈ آف ٹائم آنا ہی ہے، دنیا نے تو ختم ہونا ہی ہے، تو جیسا تیسا بھی ایمان ہے آخرت کے اوپر تو بس ٹھیک ہے، اب تو اس کو جنت میں ہی جانا چاہیے. اور اس کی دلیل اس آیت کو دیتے ہیں. تو اس طرح تو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو پہلی تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ کسی ایک حدیث کو لے کے یا کسی ایک قرآن کی آیت کو لے کر ہم اور پورے اس کے اوپر نہیں رکھ سکتے کہ جو ہے نا، جو کہ دیکھے یہ تو یہاں پہ ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جب پہلے آ چکا ہے وہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافرین بھی، جب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. میں نے آپ کو وہ رکوع بہت بتایا کہ بہت ہی اہم رکوع ہے، بہت امپورٹنٹ رکوع ہے، اور اسی میں دعوت دی گئی ہے. اسی میں جب کہہ دیا گیا کہ ایمان لاؤ، جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، جو نازل کیا ہے اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ، تو اس کا مطلب اس کتاب پہ ایمان لانا ہے نا، قرآن پہ ایمان لانا ہے. قرآن پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے، کیونکہ وہی قرآن کو لے کر آیا نا. تو اب یہ انڈرسٹوڈ بات ہے آگے کہ آگے ہر جگہ پہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کی بات تو ہے ہی ہے. یہاں پہ خاص طور پہ کیا کہا جا رہا ہے، اگر آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھے نا، وَعَامِلَ صَالِحًا کے بعد یہ سمجھے، اگر آپ بریکٹ میں یہ لکھ دیں فی ایامہم، یہ لکھ دیں اپنے اپنے وقت میں، ٹھیک ہے، تو بات پوری طرح سمجھ آ جائے گی. یعنی چاہے یہودی ہوں، چاہے صابی ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے مسلمان ہوں، جو اللہ پر، آخرت پر اور نیک کام کرتا رہے اپنے اپنے وقت میں. یہودی تھے تو وہ اپنے وقت میں، جب ان کا وقت تھا، یعنی جب ابھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے اس وقت انہوں نے جب یہ کام کیے، تو وہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، ان کے لیے پھر خوف اور غم نہیں ہے. اسی طرح جو عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، جب وہ اپنے وقت میں انہوں نے اللہ پر، آخرت پر اور صالح عمل کیے، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی نہیں تھے، تو پھر ان پہ کیسے ایمان لاتے؟ تو وہ بھی پھر اپنے وقت میں، تو اپنے وقت کے نبی پہ تو ایمان لائے تھے، تو وہ ٹھیک ہے پھر، ٹھیک ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے کئی لوگ ایسے تھے کہ جو توحید پر ہی تھے. حضرت عمر کے جیسے بہنوئی ہیں، حضرت فاطمہ بنت خطاب کے شوہر ہیں حضرت سعید بن زید، ان کے جو والد ہیں، ان کا واقعہ یہ آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ اے اللہ، میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، مگر مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کیسے کروں. یعنی وہ توحید پہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں تھے نا اس وقت، وہ تھے توحید پہ، تو یعنی اس وقت، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر ان پہ ایمان لانا ضروری ہے. امید ہے کہ اب بات سمجھ آ گئی ہوگی. اور پھر دیکھیں یہاں پہ ایک اور بات، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بات ہم پہلے کہاں پڑھ چکے ہیں، یہ بتائیے. آیت نمبر 38 نکالیں، وہاں پہ بھی آیا نا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور یہاں پہ بھی آیا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو کیا وہاں پہ کیا کہا گیا؟ یہ ہدایت میری طرف سے تمہاری طرف آتی رہے گی ہدایت, تو جو ہدایت کو فالو کرے گا اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. تو بات وہاں پہ کلیئر ہے, وہ خوف اور غم نہ ہونے کی بات وہاں پہ ایک کنڈیشن بتائی گئی, یہاں پہ دوسری کنڈیشن بتائی گئی. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی خوف اور غم نہ ہو تو تمہیں میری طرف سے آنے والی ہر ہدایت کے اوپر ایمان لانا ہوگا اور اس کو فالو کرنا ہوگا, تو پھر قرآن پہ ایمان لانا ہوگا. چلیں جی دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی 63 سے 73 تک میں ہم تین واقعات کو دیکھیں گے. پہلا واقعہ جو ہے آیت 63 اینڈ 64, اس کو ایک بریکٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے, اللہ کے کتاب کو اللہ کی کتاب سے منہ موڑنے کی سزا سمجھ لیں آپ, اللہ کی کتاب سے منہ موڑنے کی سزا, یہ اس کا آپ ٹاپک نیم دے سکتے ہیں. نمبر ٹو ہے آیت 65 اور 66, یہ دوسرا اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اور اس کا آپ ٹاپک دے سکتے ہیں کہ ایک نافرمان بستی کی عبرتناک سزا. اور نمبر تھری, تیسرا حکم جو ہے آیت 67 سے لے کے پھر 73 تک اینڈ تک جو آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی, گائے ذبح کرنے کا حکم. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اس کو سمجھنا انشاءاللہ تعالی. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے لاسٹ ٹائم عمل کی باتیں لکھی تھی, کوئی عمل کی بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے لکھنا ہے کہ میرے لیے عمل کی باتیں, ایک ایک آیت دیکھنی ہے آپ نے اور اس میں سے ڈھونڈنی کہ میرے لیے عمل کی کیا بات ہے. اب جیسے فار ایگزامپل آیت 60 سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس میں کہ ہر ایک لوگوں کو گروہ کو علم تھا اپنی جگہ کا جہاں سے انہوں نے پانی پینا تھا. تو علم لینا ضروری ہے, جاننا ضروری ہے, اور کھانا پینا منع نہیں ہے, لیکن زمین میں فساد نہیں ہم نے کرنا. اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے پھر یہ نہ ہو کہ فساد کرتے پھریں زمین میں. پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 61 میں, آیت نمبر 61 ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کھانا پینا منع نہیں ہے, لیکن کیا مجھے اپنے لیے عمل کی کیا بات نظر آتی ہے کہ آج اگر میں قربانی کروں گی تو ہی جہالت کے اندھیرے دور ہوں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے آج اپنی کتاب ہمارے ہاتھوں میں دی ہے, اگر آج میں صرف اپنے گھر کے کھانے پکانے اور کچن اور انہی چیزوں میں لگی رہوں گی اور ادنا کو اعلیٰ پہ پریفر کرتی رہوں گی تو اللہ کی کتاب کو کون زندہ کرے گا؟ ٹھیک ہے, اگر آج میں نے قربانی دی اور اس کتاب کو پھیلانے میں اور اس کو کم از کم اپنے گھر میں زندہ کرنے کی کوشش کی تو چراغ سے چراغ جلتا ہے, انشاءاللہ چند سالوں میں آپ دیکھیں گے ماحول بدل جائے گا. تو مجھے اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے, میں کہاں کہاں ادنا کو لے رہی ہوں اور اعلیٰ کو چھوڑ رہی ہوں, خیر کو چھوڑ رہی ہوں. پھر آپ تیسری آیت میں دیکھیں, اچھی طرح یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان اور صالح عمل کے بغیر نجات نہیں ہے. تو مجھے اللہ پر ویسا ایمان لانا ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, آخرت پر ویسا ایمان لانا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتایا ہے, اور نیک عمل وہ کرنے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور یہ کہہ کر کنی نہیں کترانی کہ مجھ سے عمل نہیں ہوتا, کہ عمل نہیں ہوتا تو بھول جائے نجات کو, پھر عمل ضروری ہے. اسی طرح آج کی آیات میں انشاءاللہ تعالی آپ اپنے لیے لیسن کے بعد پڑھنے کے بعد ضرور لکھا کریں میرے لیے عمل کی کیا بات ہے. ہم کو چھوڑ دیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم وہ کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کرتے, فلاں وہ کرتا ہے, اس کو چھوڑیں, میں کیا کرتی ہوں, مجھے کیا کرنا ہے, مجھے اپنی فیوچر پلاننگ کیسے کرنی ہے اس سبق کی روشنی میں جو آج میں نے پڑھا. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کو بہت فائدہ دیں گی. آپ کوئی بولڈ مارکر لے کر اسے लिखें मेरे लिए अमल की बातें, और फिर उसके नीचे पॉइंट वाइज लिखें, कहानियां नहीं लिखने की जरूरत, पॉइंट वाइज नंबर वन आयत नंबर दिस एंड दिस से फिर ये मैंने मेरे लिए अमल की बात, नंबर टू आयत इस इसकी रोशनी में मेरे लिए अमल की बात, ठीक है। चलिए जी, पहला हुक्म क्या उनको मिला, क्या उनके साथ बात हुई, इन में हम आयत 63 में देखते हैं, वह इज अखज़ना मीथाक़कुम, और जब हमने लिया उनसे पक्का वादा, पक्का अहद तुमसे लिया। मीसाक किस वादे को कहते हैं, जो एक होता है ना आम प्रॉमिस करना, और एक होता है मीसाक जिसमें दोनों पार्टीज को, जो पार्टी वादा कर रही है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट में जा रही है, वो अच्छी तरह समझती है कि क्या चीज है जिसका मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूं, दोनों साइड्स को अच्छी तरह मालूम है दोनों पार्टीज को, ठीक है। तो इससे पता चलता है जो अल्लाह ताला ने मीसाक लिया तो अच्छी तरह इनको समझ थी कि ये किस चीज का वादा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो कहें कि हमें तो पता ही नहीं, ठीक है। अल्लाह ताला ने इसका मतलब हर बात साफ साफ वाजे क्लियर कर दी हुई थी, और क्या था, कैसे था मीसाक लिया इनसे, वरफअना फौकुकुमुत तूर, और उठाया हमने इन तुम्हारे ऊपर तूर को, पहाड़ जड़ से उखाड़ के इनके सरों के ऊपर खड़ा कर दिया गया था, ऐसे इनसे वादा लिया गया था। ये कौन से वादे की बात हो रही है। अच्छा, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, तो आपको याद है कि मूसा अलैहिस्सलाम इनके लिए तौरात लेकर आए, इनके लिए किताब लेकर आए जिसमें जिंदगी गुजारने के लिए अहकामात थे। तो उन्होंने एक एतराज क्या किया, पहले तो उन्होंने ये एतराज किया, हम तो नहीं यकीन करते कि ये जो अल्लाह की तरफ से, पहले हमें ले जाके दिखाओ। फिर याद है वो हमने बात पढ़ी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम इनको लेकर गए तूर पे, और फिर वहां पे इन्होंने कहा हमें अल्लाह दिखाओ भी, हमें क्या पता ये अल्लाह ताला की आवाज ही है। तो फिर उसके बाद वो सारे मर गए, फिर अल्लाह ताला ने उनको दोबारा जिंदा किया। अच्छा, फिर अब मान तो गए कि हाँ अल्लाह की तरफ से ही है, लेकिन आप क्या कहने लगे, ये तो बड़ा मुश्किल है इस पे अमल करना, हमसे नहीं होता इस पे अमल। तो पता है फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ को उनके ऊपर लाके खड़ा कर दिया। अब इतना डर गए, डर के मारे कहने लगे कि हम मानते, सजदे में गिर पड़े, और सजदे में ऐसे गिरे कि जैसे इंसान डर रहा हो ना किसी चीज से, तो वो कनखियों से थोड़ा सा ऊपर को भी देखता है कि अरे कहीं मेरे ऊपर गिर तो नहीं रहा, तो एक साइड से ना मुंह निकाल के देख भी रहे थे कि पहाड़ नीचे तो नहीं आ रहा हमारे ऊपर, और साथ सजदे में भी गिरे हुए। तो इस तरह अल्लाह ताला ने इनसे अहद लिया, इसीलिए इनके हाँ ये सजदा जो है ना बहुत ही पसंदीदा समझा जाता है कि इस सजदे की वजह से हमारी निजात हुई थी, वरना पहाड़ हमारे पर गिरने लगा था। तो ये इस तरह का सजदा करते हैं कि सजदा बड़ा अच्छा है, इससे हमें हमारी जान बख्शी गई थी। तो इनके ऊपर जब पहाड़ इस तरह से खड़ा किया गया, कितना सख्त तरीके से इनसे अहद लिया गया, सोचें जरा। और इनको क्या कहा गया, खुदू मातैना कुम बिकुव्वतिन, पकड़ो इसको जो हमने तुम्हें दिया कुव्वत के साथ, अब मजबूती के साथ पकड़ना है। किसको दिया हमने तुमको, क्या चीज दी थी अल्लाह ने उनको, तौरात किताब शरीयत, ये जो हमने दी है ना, इसको अब मजबूती के साथ पकड़ो। कैसे पकड़ना था, बुक पकड़ के बैठ जाना था, जहां जाते उसको ले लेके फिरते रहते, कैसे पकड़ते मजबूती के साथ, यानी अब इसके ऊपर अमल होना चाहिए। किताब के सिर्फ अल्फाज की सूरत में नहीं, सफों में नहीं पढ़े रहे ये अल्फाज कि जिल्दों में बंद हैं और अलमारियों के ऊपर पड़े हुए हैं, बल्कि इसमें जो अहकामात हैं, जो इसमें हिदायात हैं, उनके ऊपर चल के दिखाओ, उनके ऊपर अमल करो, मजबूत पकड़ो, ठीक है। और क्या करो, नंबर टू वज़कुरु मा फीही, और याद करो जो इसमें है। इसमें याद करने का मतलब ये नहीं कि बस हिफ्ज कर लो, बल्कि किताब को पढ़ना, उसको सीखना, इसको अच्छी तरह समझना, ये है इसकी तस्कीर, ठीक है। यानी एक तो पहली बात क्या है, खुदू मातैना कुम बिकुव्वतिन, यानी अमल करो सही तरीके से, दूसरे इसको याद रखो, और याद रखने का एक तरीका क्या होता है, इसकी डिस्कशन करना, इसको हर हर जगह बयान करना, या चाहे आपस की बातचीत में, इसमें देखें याद रखें, जब इंसान फजूल बातों से अपने जान छुड़ाएगा तो तभी इसको भी याद दहानी इसी कर सकेगा ना, इसका चर्चा कर सकेगा, इसके ऊपर बात कर सकेगा। जिस बंदे की बातों के अंदर हर वक्त दुनिया और दुनिया की चीजें ही डिस्कस होती रहें, वो फिर कहाँ अल्लाह की किताब का जिक्र कर सकता। ठीक है, तो उनसे ये अहद लिया गया था, ये वादा लिया गया था, लअल्लकुम तत्तकून, किस लिए ये करो, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, ताकि तुम बच सको। मुत्तकी कौन है? वका कमाना क्या होता है? बचना, यानी तुम्हारी निजात हो सके, तुम अल्लाह के अजाबों से बच सको। तो वाकई बचना चाहते हो तो फिर इस किताब को पकड़ना होगा, इसका जिक्र करना होगा। अच्छा ये बताइए कि हमारे लिए भी कोई हुक्म है किताब को पकड़ने का, या सिर्फ बनी इसराइल के लिए था? याद रखें, अल्लाह की किताबें किसके लिए आती हैं? पहले भी हमने बात की थी, हमने क्या बात की थी, ये हमने बात की थी ना कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब भी दी और हिदायत भी दी। किस लिए दी थी? लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। हिदायत के लिए होती है किताब, के इंसान राह पा जाए। और आज हम और बातें समझ रहे हैं कि किताब का, किताब के साथ क्या आपका रवैया होना चाहिए, क्या आप क्या एटीट्यूड, क्या आपका बिहेवियर होना चाहिए किताब के साथ, क्या होना चाहिए। हमारे यहाँ किया जाता है कि गोटे किनारियों वाले और जो बड़ा कीमती अपने सूटों में से बच जाते हैं, कपड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, तो उनके फिर हम ना कुरान के गिलाफ बना के सीते हैं उसके गिलाफ, और फिर उसमें बड़ा कहते हैं कि हमने कुरान के लिए इतना प्यारा गिलाफ सिया है ना, फिर उसके अंदर कुरान पाक को रख के फिर सजा देते हैं ऊपर, या फिर खूबसूरत खूबसूरत कुरान ला के वो शेल्फ्स में सजा देते हैं। बस ये हमारा इज्जत देने का तरीका ये है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि आपने क्या करना है? क्या यही अगर करना होता तो फिर तो यहाँ पे यही लिख दिया जाता कि उनसे वादा लिया गया कि आपने इज्जत करनी है और इसको ऊंचा रखना है। उनको कहा गया इसको कुव्वत से पकड़ो, यानी इसको सीरियस लो ना। यही हमारा भी कुरान के साथ है कि अल्लाह ताला ने फरमाया वतासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। एक हदीस में भी आता है ये कुरान अल्लाह का दस्तरखान है, इसमें से तुमसे जितना हो सके ले लो, ये अल्लाह की रस्सी है, इसको पकड़ो, ये अल्लाह तक पहुंचाता है। जिसने इसे थाम लिया इसके लिए हिफाजत का सामान है, ये हिफाजत करता है उसकी, ये रस्सी है अल्लाह की। तो हमें भी तो कहा गया वा तसीमु, मजबूत पकड़ो इसको, इस रस्सी को मजबूत पकड़ लो। जैसे इनको कहा गया खुदू मा आतैना कुम बिकुवतिन, तो हमें दूसरे अल्फाज में यही बात कही गई, लेकिन क्या हमने मजबूती से पकड़ा, कुव्वत से पकड़ा, और क्या हमने इसका जिक्र किया कि इसकी याद दहानी होती रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कुरान को सीखो और इसको पढ़ो, इसलिए कि जो शख्स इसको तहज्जुद में पढ़े तो उसकी मिसाल उस खुली थैली की सी है जो मुश्क से भरी हो, जैसे मुश्क एक खुशबू होती है ना, एक थैली है जिसमें मुश्क भरी हो और उसकी खुशबू तमाम मकान में फैली हो, यानी जब आप तहज्जुद में उसको उठ के पढ़ेंगे तो ऐसे है कि जैसे आपके पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी। हम सोचते हैं हम लोगों को बुला के पढ़वा लें, खुद हम पढ़ते नहीं है। देखिए हदीस में क्या पता चलता है कि आप खुद तहज्जुद में उठ के पढ़ें, आपके सारे मकान में खुशबू फैल जाएगी इस कुरान की। और जिसने सीखा फिर सो गया, पहले सीखो और फिर उसको तहज्जुद में पढ़ो तो मकान में खुशबू फैलेगी, और जिसने सीखा और सो गया यानी तहज्जुद नहीं पढ़ी, तो उसकी मिसाल मुश्क की उस थैली की सी है जिसका मुंह बंद कर दिया गया। थैली में मुश्क तो भरी हुई है, खुशबू तो है, लेकिन आपने मुंह बंद किया है। खोलें उस मुंह को, यानी इसको पढ़ें तहज्जुद में। ये तिर्मिजी में, इब्ने माजा में, इब्ने हब्बान में ये रिवायत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग अल्लाह की तरफ रुजू करो, इसके यहाँ कुर्ब हासिल करने का इससे बढ़ के और कोई जरिया नहीं है जो खुद अल्लाह की तरफ से उतरी है, यानी कुरान पाक। अल्लाह के करीब होना है, कुर्ब लेना है, शर्फ लेना है, उसके यहाँ कोई मकाम पाना है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? अल्लाह का कलाम। और जो भी इंसान इसको पढ़ेगा, भी इस पे अमल करेगा, उसके पेरेंट्स को एक ताज पहनाया जाएगा, जो नूर से बना होगा कयामत के दिन ना, और दो जोड़े ऐसे पहनाए जाएंगे तमाम दुनिया उनका मुकाबला नहीं कर सकती। वो फिर उस दिन कहेंगे पेरेंट्स उसके कि याला ये जोड़े किस सिले में है, तो उनसे कहा जाएगा तुम्हारे बच्चे ने कुरान जो पढ़ा है उसके सिले में, जो पढ़ के अमल करेगा। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें उनको ये जब अहकामात दिए गए, याद इसको कुव्वत के साथ पकड़ो और इसको याद करो ताकि तुम तकवा इख्तियार, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम बच सको। अल्लाह ताला चाहते हैं कि लोग अल्लाह के अजाबों से बच जाएं, उसके अहकामात पे चलें, जिंदगी इसके मुताबिक गुजारें। लेकिन उन्होंने क्या किया? अच्छा, अब उन्होंने वादा तो कर लिया, मीसाक कर लिया, क्या कि हाँ अल्लाह हम चलेंगे, हम मानेंगे, लेकिन क्या हुआ, हम पूरी तरह अमल करेंगे, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया, अब भूल भाल गए इसको। अब क्या हुआ, सुम्मा तवल्लई तुम मिन बादी ज़ालिका, इसके बाद मुंह फेर लिया तुमने ये, यानी पहले वादा किया और उसके बाद मुंह फेर लिया, ये किताब के अहकामात ही बदल दिए, अपनी मनमानी चीजें कर ली। इस किताब को और पर्पस के लिए तो यूज कर रहे थे, लेकिन इसको अमल करने के लिए नहीं यूज करते थे। तो अगर हम अपनी जिंदगियों में देखें, हमारी जिंदगियों में भी हम अल्लाह के साथ जो वादा किया हुआ है उसको कब निभाते हैं, कब इसको मजबूती से पकड़ते हैं इस किताब को, ये बताएं। जिस वक्त हमारे ऊपर भी कोई पहाड़ आके खड़ा हो जाता है हमारे सरों पे, पता है कौन सा पहाड़ हमारे सरों पे खड़ा होता है, जब हम सीधे होते हैं, मुसीबतों का पहाड़, तकलीफों का पहाड़, परेशानियों का पहाड़, दुखों का पहाड़, बीमारियों का पहाड़, जब ये हमारे सर पे खड़ा हो जाता है तो हम बहुत अच्छे तरीके से इस वादे को निभाते हैं। आप देख लें, अगर कोई फौत हो जाए तो फिर किताब फौरन याद आ जाती है, कोई बीमार हो जाए तो फिर किताब फौरन खुल जाती है, नौकरी चली जाए तो फिर किताब से वजीफे फौरन याद आ जाते हैं। ये पहाड़ ही है ना, हमारे ऊपर भी जब पहाड़ खड़े होते हैं मुसीबतों के, तो तभी हम किताब की तरफ आते हैं, तभी हम किताब को मजबूती से थामते हैं। और जूं ही ये पहाड़ टल जाता है, उनसे भी जब पहाड़ हटा दिया गया तो कुछ अर्से तो सीधे रहे, फिर उसके बाद क्या किया, तवल्लई तो मुंह फेर लिया। तो उसके बाद फिर हमारे पर भी मुसीबतों के पहाड़ टलते हैं, तो अब किसको याद रहता है कि हमने कभी किताब को खोला था। आप देखें, एक मरने वाले के घर में जितनी ये किताब खोली जाती है ना, कहीं और नहीं खुलती। कभी यह जीतों के घर में भी इस तरह खोली गई है, गोया के मुर्दों की किताब ही बना दी गई कि जब कोई मरेगा तो पढ़ी जाएगी। और जिंदे क्या करें, उनके लिए तो नहीं जरूरत इस किताब की, वो तो समझते हैं कि हमारे लिए तो इस किताब के अंदर वो, देखें इंसान छोड़ता किस चीज को है, मुंह मोड़ता किस चीज से, खुद ही सोचें, मुंह फेरते आप किस चीज से, जिसको आप अपने लिए अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं, जिसमें अपने लिए कोई फायदा नहीं समझते, और जिसको छोड़ने से आपको कोई नुकसान नहीं महसूस होता। आज कुरान से भी मुसलमानों का यही रवैया है, वो इसको अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं समझते, इसीलिए मुंह फेरे में। आप कहेंगे हम कहां मुंह फेरते हैं, हम तो रोज तिलावत करते हैं। जब इसको कुव्वत से पकड़ा ही नहीं हुआ, जब इसका फहम नहीं हासिल किया, जब इसको समझा ही नहीं है, तो फिर इससे मुंह फेरना ही है। ये याद रखिए, ये ऐसे ही है जैसे वो एक मिसाल इमाम गजाली ने दी है कि एक बाग है, बाग के मालिक ने अपने एम्प्लॉयज को एक दिया, रूल्स दिए लिख के, और उनको कहा इसके मुताबिक बाग की हिफाजत करना, बाग में जो भी इंस्ट्रक्शंस थी वो सारी इसके ऊपर लिखी हुई हैं, बाग में ये करना, ये ऐसे ना करना। अब उन्होंने बहुत खूबसूरती से और बड़े अच्छे तरीके से उन इंस्ट्रक्शंस को लिया, और उनको बहुत शौक से पढ़ते भी थे, लेकिन ना उनको कुछ समझ आती थी कि क्या लिखा हुआ है, ना ही उसके मुताबिक करते थे। कुछ अरसे में क्या हुआ, वो बाग सारा तबाह बर्बाद हो गया, इसलिए कि बाग के मालिक ने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी उसके मुताबिक तो बाग के ऊपर कुछ किया ही नहीं उन्होंने, अब बस बस शौक शौक से पढ़ते रहे इंस्ट्रक्शंस को। अब उसके बाद अगर वो बा के मालिक को कहते हैं कि हमने तो बड़ी शौक से आपकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी और बा हो गया तबाह, तो मालिक क्या सजा देगा या इनाम देगा? बताएं, पूछेगा नहीं कि मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैं क्या तुम्हें लिख के दी थी ये सारी बातें कि ये करना और ये नहीं करना, और तुमने क्या किया? पूछेगा या नहीं किया? पूछेगा। क्या वो खुश होगा इस बात पे कि तुम लोग रोज पढ़ते थे उठ उठ के मेरी इंस्ट्रक्शंस को? वो कहेगा मैंने तो तुम्हें इसलिए दी थी कि तुम उसके मुताबिक बाकी देखभाल करो, टेक केयर करो, उसके मुताबिक उसके अंदर सारी चीजें इंप्लीमेंट करो, इसलिए तो नहीं दी थी कि तुम रोजाना उसका विर्द करते रहो। तो ये हाल हमारा है, हम इस दुनिया में रहते हुए जिंदगी को अगर बाग बनाना है तो हमें क्या चाहिए था कि अल्लाह ताला ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करें, ये भी इसी तरह लिखी हुई है हमारे लिए। लेकिन हमने क्या इसको बना लिया, बस एक दम दरूद की किताब, एक वजीफों की किताब, एक जिन भगाने की किताब, या दुल्हनों को रुखसत करने के लिए किताब, या मर जाए कोई तो उनके ऊपर पढ़ने के लिए किताब। इतना दुख होता है, काश जिंदा लोगों के घरों में इसी तरह किताब खुली हो जैसे कि ये मुर्दों के घर के अंदर खोली जाती है। कोई मर जाए, कोई फौत हो जाए तो जैसे उस घर में खुलती, काश जब खुशियां हों, लोग ठीक ठाक हों, अच्छे हालात हों, उस वक्त भी ऐसे खुले। लेकिन जब तक इनके सरों पे तूर नहीं मुअल्लक कर दिया जाता ना, ये किताब को नहीं पकड़ते। तो ये हाल हमारा हो गया। और कई लोग तो पढ़ने की भी नहीं जहमत गवार करते, उन्होंने तो बंद करके ऐसे रखी हुई है कि अब खोलते भी हैं तो सही अल्फाज भी नहीं अदा होते कि लिखा क्या हुआ, सही से पढ़ भी नहीं पाते। अब पढ़ ही नहीं पाते तो फिर इसलिए खोलते ही नहीं है, क्योंकि एक झिझक आ गई है। तो बाज लोग ये एहसान करते हैं कि हमने रोज पढ़ लिया, और बाज ऐसे हैं कि वो इतनी फुर्सत भी नहीं पाते। फिर भी हम अपने आप को बहुत अच्छे मुसलमान समझते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया यहाँ पे, فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ। याद रखो, अगर अल्लाह का फजल ना होता तुम्हारे ऊपर, स्पेशल अल्लाह ताला की फेवर ना तुम्हारे ऊपर होती, उसकी मर्सी, उसकी रहमत ना होती तुम्हारे ऊपर, तो तुम बहुत नुकसान उठाने वाले बन जाते। यहाँ पे क्या पता चला कि नुकसान किस वजह से होना था, किताब को छोड़ने की वजह से ना, कि तुमने मुंह फेर लिया था। अब भी अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर रहमत की तो तुम बच गए, वरना ये ऐसी चीज है कि तुम तबाह हो जाते। किताब को छोड़ना इतनी बुरी चीज है, कब की तुम्हारी तबाही हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला ने चूंकि हर एक कौम का एक वक्त मुकर्रर किया होता है कि कौम तौबा कर ले, तो अगर अल्लाह ताला ये मोहलत ना दे तो फौरन पकड़ लेता, अजाब आ जाता इनके ऊपर कि तुम क्यों मुंह मोड़ते हो अल्लाह की किताब से। तो देख लें आप, अल्लाह ताला की किताब से मुंह मोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। और यही किताब है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तकून, कल वो किताब तौरात थी, आज वो किताब कौन सी है, कुरान है, हुदन लिलमुत्तकीन है, ये हिदायत है तकवा वालों के लिए। हमें भी यही कहा गया है। किताब का अगर आप मकसद देखें ना, तो यही मकसद होता है कि आप मुत्तकी बन जाए, अल्लाह से डरने वाले बन जाए, अल्लाह की नाराजगी से डरने वाले। तो इसमें हमें पता चलता है कि किताब की कितनी अहमियत है। और हम इससे वो काम ना लें कि जैसे कि उन लोगों ने किया था कि हाँ, उन्होंने कहा हम तो किताब के ऊपर ईमान तो लाते हैं, तौरात पे ईमान लाते हैं, हम तो तौरात का इनकार नहीं करते, लेकिन उनकी जिंदगी में कहीं तौरात नजर नहीं आती थी। तौरात के बड़े बड़े आलिम थे वो, लेकिन उसी से गाफिल थे। तो याद रखिए, ये अल्लाह का कलाम यही हमारे लिए निजात का जरिया है। इसको छोड़ना नो ऑप्शन, जिसको तो भूल जाएं कि आप इसको छोड़ के कभी जिंदगी सही से गुजार सकते हैं। इसलिए मैं ये कहूंगी कि सारी जिंदगी के लिए इसको थाम के रखना, आखिर दम तक के लिए ये नियत कर लें, आज नियत कर लें कि अब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया है, सीखना शुरू किया है, तो या अल्लाह आखिर दम तक मैं इसके साथ ताल्लुक रखूंगी। और अल्लाह ताला तू इस मेरी नियत को पूरा तू फरमाना। कभी भी ये ना छोड़ें, सोचें कि मैं इसको छोड़ के जिंदगी गुजारूं, ये मुश्किल है, मैं पीछे हो जाती हूँ, अभी वक्त नहीं, अभी ये फलां काम, अभी ये फलां काम नहीं। जो भी जिंदगी में काम चल रहे हैं उनके साथ मुझे कुरान को लेकर चलना, ये नियत कर लें। अब दूसरा वाक्य आता है। देखें, पहला वाक्या यहूद के इस रवैये का कि उन्होंने जब अहद तोड़ा तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया। अब दूसरा वाक्या उनकी हीला साजी का है। हीला साजी का मतलब क्या होता है? हीले क्या होते हैं? बहाने, बहाने बना बना के और फिर उसके बाद चीजों को जायज करना। वलाकद अलिमतुम अल्लदीना अतदौ मिनकुम, और अलबत्ता तहकीक तुम अच्छी तरह से जानते हो उन लोगों को जिन्होंने ज्यादती की तुम में से। किस में ज्यादती की? फिस सब्त में। किन को कहा जा रहा है कि तुम अच्छी तरह जानते हो? पहले भी कहा गया वह इद अखदना मीसाकुम, हमने तुम से पक्का अहद लिया, तुमने मुंह मोड़ा। अब ये कौन सुना रहा है ये आयात? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? यहूद को जो मदीना में रहते थे। और यहूद ने कौन सा, उन्होंने तो कोई अहद नहीं किया था, उनके तो अबाओ अजदाद थे, 2000 साल पहले वो गुजरे थे, तो उन्होंने अहद किया था, उन्होंने मुंह मोड़ा था, तो इनको क्यों कहा जा रहा है? मैंने आपको ये बात, इसका जवाब पहले भी बताया था कि जब कोई कौम अपने से पिछलों के ऊपर, उनके कामों के ऊपर, उनके जो भी तरीके थे उनके ऊपर फख्र करती है और उनको ओन करती है और अपने आप को उनसे मंसूब करती है, एसोसिएट करती है और कहती है कि हम उन्हीं में से, और जो भी वो करते थे बहुत अच्छा करते थे, उन्होंने सारा बिल्कुल ठीक किया और हम भी वैसा ही करेंगे, तो वो भी उन्हीं में से होती है, उनको उनसे अलग नहीं समझा जाएगा। ये अपने आबाओ अजदाद को, ये इनकी बातों को एंडोर्स करते थे, उसमें उनका साथ देते थे कि वो बिल्कुल ठीक था। तो अल्लाह ताला ने सारी बातें इनको कहीं, तुमने मीसाक लिया, तुमने मुंह मोड़ा, क्योंकि तुम और तुम्हारे अबाओ अजदाद एक ही हैं, तुम भी वही काम कर रहे हो जो तुम्हारे अबा ने किया, तुम भी उसको ओन करते हो जो उन्होंने किया, और तुम्हें बड़ी अच्छी तरह पता है उन लोगों के बारे में जिन्होंने ज्यादती की तुम में से, सब तुम्हें। अच्छा, ये जो पहला वाकया है ये यहां तक खत्म हो गया, आयत 64 तक। अब ये दूसरा हुक्म है उसकी बात आ रही है। मैं थोड़ी सी आपको टाइमिंग भी बता दूं, ये जो पहला वाकया अभी आपने 63-64 में पढ़ा है ना, ये कब का वाकया? ये मैंने आपको बताया था पहले, ये जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए और लेकर आए वहां से हिदायत और इनको आके बताई, तो ये उस वक्त का वाकया, ठीक है, जब ये वहां पे थे सहराए सीना में, सीना डेजर्ट में ना। अच्छा, अब ये दूसरा जो वाकया है हम आयत 65 और 66 में पढ़ने लगे हैं, ये मूसा अलैहिस्सलाम के साथ का नहीं है, ये मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जमानों में दाऊद अलैहिस्सलाम आए थे, वो भी आपको पता है ना, एक नबी है। दाऊद अलैहिस्सलाम जब आए तो उनके जमाने में ये वाकया हुआ था। ये अभी कहा जाता है कि ये कोई 973 BC कबले मसीह का वाकया, और या 1000 ईयर्स कह लें, 1000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट का वाकया है, कबले मसीह का। और ये ना समंदर के पास एक बस्ती थी, उसका नाम था ईला, और आजकल वहां पे इसराइल की एक गालिबन एक हार्बर है कुबा के नाम से, वहां यानी आज भी ये जगह है मौजूद, ठीक है। तो ये उस बस्ती का वाकया, यानी ये लोग रहते थे, ये बनी इसराइल में से एक कबीला था, और ये यहाँ पे फिशिंग करता था, समंदर के पास रहता था। जाहिर है जो समंदर के पास रहते हैं उनका काम ज्यादातर प्रोफेशन माहीगीरी ही होता है, और अब ये वहां पे मछलियां पकड़ते थे, यही इनका रोजगार है। अल्लाह ताला ने इनके लिए सैटरडे का दिन, बहुत मुकद्दस दिन, होली डे, हॉलीडे भी इसी से निकला है, हॉलीडे जो है ना वो भी होली, होली डे कि बहुत मुकद्दस दिन इनका करार पाया था, कि हॉलीडे भी इसलिए है कि उस दिन आपने कोई काम कारोबार नहीं करना, छुट्टी का दिन इसीलिए होता है ना, कोई काम कारोबार नहीं करना, बस अल्लाह की याद करनी है, वो होली डे होता है। अल्लाह ताला ने 6 दिन दिए कि 6 दिन आप अपनी दुनिया करो जितनी भी करनी है, लेकिन एक दिन मेरे लिए रखो कि मेरी इबादत के लिए मखसूस कर दिया गया, मेरी इबादत करो इस दिन। तो इनके लिए जैसे हमारे लिए फ्राइडे का दिन है, जुमे का दिन, लेकिन हमारे लिए पूरा दिन नहीं कहा गया कि आप पूरा दिन कोई कारोबार नहीं कर सकते। हमारे लिए सिर्फ वो टाइम जिसमें जुमे की अजान होती है उससे लेकर और क्या नाम होता है जब नमाज खत्म हो जाती है उस तक वो टाइम है जिसमें कारोबार वगैरह आप नहीं कर सकते, मना किया गया। बाकी टाइम में आप कर सकते हैं, उससे पहले और उसके बाद में जरूर कर लें, उसका हुक्म भी आ गया सूरह जुमा में आप देखेंगे। लेकिन इनके लिए ना बहुत स्ट्रिक्ट थे लॉस, इनको कहा गया था कि आप सैटरडे को खाना भी नहीं आपने पकाना, आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ इबादत के लिए मखसूस है। ठीक है, अब इसमें इस कौम का बड़ा टेस्ट आ गया, बहुत बड़ा टेस्ट था, इसलिए कि ये तो फिशिंग ही करते थे। और उस दिन मछलियां पानी से निकल निकल के जाती थी, यानी ऐसे अटकेलियां करती थी, उछलती थी, जैसे मछलियां आपने देखी है ना कई दफा वो करतब दी दिखा रही होती हैं, ऊपर उछलती हैं फिर नीचे पानी में जाती हैं, यानी अपने मुंह आके ऊपर दिखाती थी और ये खड़े देख रहे होते थे। अब मुंह में पानी आ रहा है कि हाय मछलियां पकड़े। आप सोच लेना, अल्लाह ताला आजमाता जरूर है, याद रखें आजमाइश जरूर आती है, अल्लाह ने आजमाना है। आप सोचते हैं अल्लाह ऐसे ही छोड़ देगा किसी ग्रोह को? कभी नहीं, कभी नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया अहसिबन्नासु अन यतरकु अन यकूलु आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला ने फरमाया क्या लोगों ने ये समझ रखा कि हम उनको ये बस कहने पे कि वो कहें हम ईमान लेकर आए, इस बात के कहने पे उनको छोड़ देंगे बस, और उनका कोई इम्तिहान नहीं होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ वो कहें हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, चलो भाई बहुत अच्छी बात हो गई, अब इसके बाद कोई टेस्ट की जरूरत नहीं। नहीं, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, लोगों को आजमाया जाएगा, आजमाइश आएगी। तो इनकी भी आजमाइश थी। और याद रखें हमेशा टेस्ट उस जगह से आता है जो चीज इंसान के दिल में बसी होती है, जो चीज इंसान को बड़ी प्यारी होती है, जाहिर है उसमें क्या टेस्ट। मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई पहनने ओढ़ने का शौक ही नहीं है ना, मुझे कोई पैसे का शौक ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, तो उसमें मेरी क्या आजमाइश होगी, क्या टेस्ट होगा? आजमाइश तो होती ही उस वक्त है जब मुझे बहुत शौक है बनने संवरने का। अब टेस्ट आ गया कि हाँ अब पता चलेगा कि हाँ ये बनती संवरती हो तो उसके बाद क्या इसको डिस्प्ले करती हो, या अल्लाह की खातिर अल्लाह के खौफ से इसको छुपाती हो, गैर महरम के आगे नहीं दिखाती। तो टेस्ट तो तभी होता है ना। तो टेस्ट अल्लाह ताला लेते हैं। अब किसी को कमाई करने का, दौलत का, पैसों का बहुत क्रेज है तो उसका उसमें टेस्ट हो जाता है। इनका देखें प्रोफेशन ये था, इनकी रोजी रोटी थी। अब इनके साथ इसी तरह का टेस्ट इनसे लिया गया कि अब सैटरडे को तुमने नहीं मछलियां पकड़नी। अब जब इनके सामने ऐसे ऐसे मछलियां उछल उछल के आने लगी तो इन्होंने क्या किया, समंदर के पास ना इन्होंने छोटे छोटे गड़े खोद दिए, छोटे गड़े खोद दिए, होल्स कर दिए जमीन में और नालियां सी बना दी समंदर तक। तो अब क्या होता था जब बहुत एकदम मछलियां उछल उछल जा रही हैं तो वो क्या पानी इन पॉन्ड्स में आ जाता था, जो छोटे छोटे पॉन्ड्स पास बनाए हुए थे ना उन पॉन्ड्स में आ जाता था। अब जब उन पॉन्ड्स में जमा हो जाता था तो अब ये सैटरडे को तो नहीं पकड़ते थे, लेकिन अब मछली तो आ गई ना, मछली वापस नहीं जा सकती, वहां से रोक दिया, वहां से काट दिया इनका वापस जाने का रास्ता, अब मछली स्टक हो गई है वहां पे, और संडे को उसको पकड़ लिया और कहा कि देखो हमने सैटरडे को तो नहीं ना पकड़ा। तो अब असल में एक दफा एक बंदे ने ऐसा किया था, और जब उसने मछली पकड़ के पकाई वगैरह और उसकी खुशबू आई तो दूसरों ने कहा भाई ये कैसे तुमने मछली कैसे पकड़ ली? उसने कहा भाई मैंने तो इस तरह से किया। अच्छा, फिर दूसरों ने कहा भाई इसने किया तो हम भी कर लेते हैं, तो क्या हो गया? फिर उन्होंने भी करना शुरू कर दिया। तो सारे के सारे कबीला जो भी था पूरे ने नहीं किया, मगर उनमें कुछ लोगों ने ऐसा किया और कुछ लोगों ने उनको मना किया और कहा कि देखो ऐसा ना करो, गलत बात है, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी ना करो। और एक थर्ड भी ग्रो बन गया। थर्ड जो था वो ग्रो क्या करता था, वो मछली तो नहीं पकड़ता था लेकिन वो कहते थे इनको मना भी करने की क्या जरूरत है, भाई अगर ये गलत कर रहे हैं तो क्या फायदा इनको मना करने का, इन्होंने मानना तो है नहीं, जब मानना ही नहीं है तो खामखा तुम क्यों मना करते, भाई अपना काम करो। अब हम इनको मना करें और वो करें, और छोड़ो जो करते हैं गलत करते हैं, करने दो, तुम्हें इसे क्या, समझे ना। यानी एक ग्रोह ने गलत किया, एक ने मछलियां पकड़ी, दूसरे ने उनको मना किया और तीसरे ने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अब इसका सूरह आराफ में इंशाल्लाह ताला हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, वहां पे 165 और 166 आयत में इसका पूरा जिक्र है। और क्या है अल्लाह ताला ने वहां पे फरमाया, और जरा उनसे उस बस्ती का हाल मालूम करो जो समंदर के किनारे वाके थी, जबकि बस्ती वाले सप्त के रोज अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते थे, जबकि सप्त के रोज इनके शिकार की मछलियां मुंह उठाए समंदर के ऊपर आ जाती थी और बाकी दिनों में वो गायब हो जाती थी। अब बाकी दिनों में क्या होता था, वो डीप वाटर्स में चली जाती थी। अब देखिए बाकी दिनों में उतना शिकार तो नहीं ना हो रहा, और ये एक दिन है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, इसलिए कि हम इनकी पहम नाफरमानियों की वजह से उनको आजमाइश में डाल रहे थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इनका टेस्ट किया था कि देखो तुम्हारे सामने वो चीज हो कि जो तुम्हारे लिए लेना हराम है, वो तुम्हारे सामने हो, इतनी ज्यादा अवेलेबल है, और फिर तुम अल्लाह की खातिर अपना हाथ रोकते हो या नहीं। बात तो ये है, ये इस चीज का टेस्ट था। अच्छा, और अच्छा फिर क्या हुआ, और इन्हें यह भी याद दिलाओ कि जब इनमें से एक ग्रोह ने दूसरे ग्रोह से कहा, तुम ऐसे लोगों को नसीहत क्यों किए जा रहे हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या सख्त अजाब देने वाला है। अब एक वो जो ग्रोह था ना, मैंने आपको बताया कि वो जो तीसरा ग्रोह था, वो कहने लगा कि भाई क्या जरूरत है इनको मना करने की, हमें क्या पड़ी हुई है, वो तो अल्लाह ताला खुद ही इनसे निपट लेगा। ठीक है, तो वो क्या कहते थे जो रोकते थे, वो कहते थे ये इसलिए कि तुम्हारे रब के हजूर हम माजरत पेश करें, और ये भी हो सकता है कि ये लोग नाफरमानी से बाज आ जाएं। वो कहते थे हम अल्लाह के हाँ तो जाके कम से कम ये कह सकेंगे कि अल्लाह हमने इनको रोका था, हमने इनको रोका था, या अल्लाह इन्होंने नहीं हमारी बात सुनी, और हो सकता है कि इनमें से किसी के दिल में ख्याल आ ही जाए। आखिरकार जब वो लोग इन हिदायत को बिल्कुल ही फरामोश कर बैठे जिनकी याद दहानी इनको कराई जा रही थी, तो हमने इनमें से उन लोगों को अजाब से बचा लिया जो उन नाफरमानियों को बुराइयों से रोक रहे थे, और बाकी सब लोगों को जो जालिम थे उनकी नाफरमानियों पर सख्त अजाब में पकड़ लिया, जिसका यहां पे जिक्र आता है फकुलना लहुम कूनू किरदतन खासीन, के हो जाओ तुम बंदर धुतकारे हुए। अल्लाह ताला ने यहाँ पे इन आयात में बहुत ही एक जबरदस्त बात है, सोचने की बात है कि अल्लाह ताला ने किनको बचाया, जो लोगों को बुराइयों से रोक रहे थे, और क्या फरमाया बाकी सब लोगों को जो जालिम थे, इसका मतलब है जिन्होंने पकड़ी मछलियां उनको भी और जिन्होंने रोका ही नहीं, और ये बस कहा कि ये बस ये तो नालायक लोग हैं, छोड़ो इनको, हमें क्या भाई, अपनी करो, तुझे वो दूसरे की क्या पड़ी हुई है, तू अपनी नबेड़। उन सब को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और अल्लाह के हुक्म से वो बंदर बन गए। कहा जाता है कि बस्ती के दो हिस्से हो गए थे, एक में ये नाफरमान लोग रहते थे और दूसरे में वो जो नेक लोग थे ना वो रहते थे। अब नेक लोग भी तो मछलियां उस दिन पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं पकड़ी। कुछ लोग थे जो अल्लाह की खातिर अपने आप के ऊपर जोर से अपने आप के ऊपर सब्र करने वाले थे। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि इनके दरमियान उन्होंने ना आपस में यानी दीवार एक बना दी थी और बीच में एक दरवाजा भी रख लिया था कि वो लोग उधर रहने लगे थे और ये इधर रह रहे थे कि हम नहीं तुम्हारे साथ रहना चाहते। अच्छा, एक रोज क्या हुआ कि उनको ऐसे लगा कि सुबह हुई है, कोई बिल्कुल सन्नाटा है और कोई आवाज नहीं आ रही, तो उन्होंने दरवाजा जब खोला, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, तो देखा कि दूसरी तरफ सारे बंदर थे, वो जो औरतें थी उनकी, जो बच्चे थे उनके, जो बूढ़े थे उनके, सब बंदर बन चुके थे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, यानी और एक एक पहचाना जा रहा था कि ये फलां औरत है, ये फलां औरत है, ये फलां मर्द है, ये फलां है। सोच सकते हैं आप, सब के सब, और सबकी दुमे निकल आई थी। बच्चे छोटे बंदरों की शक्ल में थे, मर्द बड़े बंदरों की, और औरत बंदरिया की शक्ल में। तो ये उनके ऊपर कितना बड़ा एक अताब आया कि लेकिन ये किस वजह से आता है? मछलियां पकड़ना एक बड़ी बात नहीं थी कि मछली पकड़ने की वजह से उनके ऊपर आया? क्या बात थी कि उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म के साथ हीला साजी की कि नहीं देखो हम थोड़ी सैटरडे को पकड़ रहे हैं, हम तो पकड़ते तो संडे को ही हैं, लेकिन सारा काम तो वही किया ना जिसका अल्लाह ने, यानी एक अपने लिए वेज बना के उसी चीज को जो हराम थी उसको अपने लिए हलाल कर लिया। और एक बात इतनी खौफनाक थी जिसने मुझे हिला दिया, और वो ये थी कि मारिफ और कुरान में जैसे लिखा हुआ कि वो जो बंदर बने थे वो अपने रिश्तेदारों और अपने जो जानने वाले थे उनको पहचानते थे, वो उनके करीब आके रोते थे। अल्लाह रहम फरमा, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, कि वो रोते थे उनके पास आके, यानी वो पहचानते होंगे ज़ाहिर, और इनकी क्या हालत होगी जो अपने रिश्तेदारों को ऐसे देख रहे होंगे। पास लोग पूछते हैं कि ये जो आज के बंदर हैं या ये हैं ये क्या वही हैं? इसी तरह का सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया कि मुस्लिम की हदीस है कि ये जो आज के ज़माने के बंदर और खिंजीर हैं क्या वही लोग हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी कौम में मस्ख का अजाब नाजिल फरमाता है ना तो उनकी नस्ल नहीं चलती फिर, बल्कि चंद रोज़ में वो हलाक होकर ख़त्म हो जाते हैं। तो बंदर और खंजीर तो पहले से मौजूद थे। ये भी कहा जाता है कि जो इनके बूढ़े थे ना वो पिग्स बन गए थे, खंजीर बन गए थे, और जो बाकी थे वो बंदर बने हुए थे। तो अल्लाह ताला जो बंदर को पैदा कर सकता है और इंसान को इंसान की सूरत में पैदा कर सकता है, वो इंसान को बंदर भी बना सकता है, उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह ताला के एक हुक्म से वो ऐसी, यानी सारे के सारे इंसान कैसे बन गए, क्या उनकी हालत हो गई? जैसे एक हदीस में ये भी आता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मेरी उम्मत के कुछ लोग फखर और गरूर और खेल तमाशे में रातें गुजारेंगे लेकिन सुबह के वक्त बंदर और सुअर बने हुए होंगे। ये वो लोग हैं जो हराम को हलाल ठहराने वाले हैं, गाने वालियों के आम होने के, शराब के पीने की वजह से, सूद के खाने की वजह से और रेशम के पहनने की वजह से। किस किस वजह से बंदर और सुअर बने होंगे? रात को वो खेल तमाशों में अपनी रातें गुजारेंगे, फखर और गरूर के अंदर रहेंगे, और उनके अंदर क्या होगा? हराम को हलाल ठहराएंगे। आज भी हमारे लोग हैं, जैसे कल ही किसी ने मुझे कहा कि अल्लाह रहम फरमाए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, उन्होंने कहा कि कोई कहते हैं कि भाई शराब तो हराम नहीं है, शराब देखे ना नशा हराम है, तो शराब एज लॉन्ग एज नशा नहीं कर रही उस वक्त तक आप पी सकते हैं, जब नशा चढ़ने लगे तो नशा हराम होता है, तो आपने ऐसे ही शराब को हराम किया हुआ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। फिर बाज लोग देखें जकात से कैसे बचते हैं। जकात का उन्होंने ये बना लिया है कि 11 महीने तक आदमी अपने नाम के ऊपर सब चीज रखेगा, 11 महीने के बाद बीवी के नाम पे कर देगा। अब साल पूरा होगा तो जकात देनी पड़ेगी ना, साल पूरा हुआ ही नहीं मेरे पास मिल्कियत में, मेरी मिल्कियत में ये चीज रही नहीं, बीवी के नाम कर दी। जब बीवी के नाम 11 महीने रही तो उसके बाद वो दोबारा मियां ने अपने नाम कर दी, अब ना बीवी को जकात देनी पड़ रही ना मियां को देनी पड़ रही, हर 11 महीने के बाद दूसरे के नाम कर देते। कैसे हीले बनाए में। फिर बाज लोग कहते कहां कुरान में लिखा है कि बाल को कवर करना चाहिए, दिखाएं मुझे, मुझे दिखाइए कि बाल कवर करने का, बाल का तो जिक्र ही नहीं है, तो आप कैसे कह देते हैं? तो हिजाब की तो कोई बात है ही नहीं, आप लोगों ने खुद ही बना ली है। कैसे अल्लाह के अकामात को हीलों बहानों के साथ कैसे उसमें से निक कैसे तावीलात निकालते हैं, कैसे तरोड़ते मरोड़ते हैं अल्लाह के हुक्मों को, जबकि साफ जो चीजें हैं हीला साजी करके उनको अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है कि हीले करके एक्सक्यूजेस करके ऐसे बना के जो चीज अल्लाह ने मना फरमाई है उसको अपने ऊपर जायज कर लेना। बाज जगह पे ये फतवा आ जाता है सूद के ऊपर, बस आप एक घर ले सकते हैं अपना जो आपका घर है, बाकी उससे ज्यादा नहीं ले सकते। ये किसने इनको कह दिया? देखो कैसे कैसे हम आज दीन के साथ खेल कर रहे हैं, ये दीन को खेल बनाना है ना, अल्लाह के अहकामात को खेल बनाना है। ये हमने अपनी मर्जी भी कर ली, अल्लाह के हुक्म को भी तरोड़ मड़ोड़ के और किस तरह से करके और ऐसा कर दिया कि जैसे कि हम अल्लाह का हुक्म ही मान रहे हैं। हाँ, हम नशा तो नहीं ना कर रहे, शराब ही पी रहे हैं, लेकिन शराब अभी तो नशे की, तो तुम्हें कौन बताएगा कि कब नशा शुरू हो जाएगा। नहीं, बस इतनी क्वांटिटी पीते हैं कि नशा ना हो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। और ये देख लें, गाने वालियों के आम होने पे किस घर में गाने नहीं है बताएं। आजकल तो हर घर जो है ना, कहीं जाने की तो जरूरत ही नहीं। पहले लोग कहीं जगहों पे ऐसी जाया करते थे जहां पे गाने बजाने होते थे, अब तो घर घर में वो आले हैं कि जिनसे गाने बजाओ। गाड़ियों के अंदर है, किसी दुकान में चले जाओ उसमें है, फिर शराब पीने से, फिर सूद खाने से, और मर्द के ऊपर रेशम हराम है रेशम पहनने से। फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग बन जाएंगे बंदर और सुअर। ये तो बने थे, अल्लाह अगर उनके साथ ऐसे कर सकता ना, इस उम्मत के साथ भी कर सकता। ये हदीस किसकी है? मुसनद अहमद की, और सही हदीस है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। लेकिन फिर भी हम लोगों को इन चीजों से सोचते हैं कि ये पुराने लोगों के साथ ही हो सकता है। हम लोग तो बस उम्मत मुस्लिमा है, हमारी तो हर चीज ही बख्शी हुई है, हम तो जो मर्जी करते रहे। आज देखें, इन सारी चीजों को भी, चाहे शराब हो, चाहे सूद हो, चाहे गाना बजाना हो, कहते हैं कहां पे हराम है, खुद ही आप लोग बनाते रहते हैं। उन्हीं चीजों को जो हराम है उनको अपने लिए हलाल कर लिया हुआ। तो इन्होंने जब ये काम किया था, देखो इनको कैसी मार पड़ी। और ये एक दो दिन, ये ऐसे नहीं हुआ एक दिन दो दिन उन्होंने किया और उसके बाद वो बंदर बन गए, नहीं, कुछ अरसे तक इन्होंने ये काम किया था, तब जाके अल्लाह ताला मोहलत देते हैं। अल्लाह एक दिन में नहीं ऐसे ही पकड़ लेते, हमें भी मोहलत मिली हुई है, हमें भी मोहलत मिली हुई है, और पकड़ आई जाती है जो हमारे हालात हैं, और अल्लाह ताला दिखाते रहते हैं हमें। लेकिन हमें कि इतने मस्त हैं कि हम ये भी नहीं समझते कि ये हमारी पकड़ है। فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا, اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا دیا آگے آنے والوں میں کے لیے بھی اور پیچھے والوں کے لیے بھی, یعنی جو نسلیں جو موجود تھیں ان کے لیے بھی اور جو بعد میں آنے والی ہیں ان کے لیے بھی عبرت بنا دیا کہ یہ لوگ, آپ کو پتہ ہے, اپنی نسلوں تک کو آگے بتاتے رہے کہ یہ کیسے ہوا تھا واقعہ, اور ایسے ہوا تھا, اور اس کے اندر یہ ہوا تھا, اور ہمارے آباؤ اجداد میں اس طرح سے بن گئے تھے۔ یہ سارے بنی اسرائیل کی بات نہیں, بنی اسرائیل میں بھی ٹرائبس تھے نا, تو ایک قبیلہ آباد تھا یہاں پہ داؤد علیہ السلام کے دور میں, ٹھیک ہے, تو سب کی نہیں یہ بات ہو رہی, لیکن ان کے ساتھ چونکہ انہیں میں یہ چیز ہوئی تھی تو یہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا نا, وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ, تمہیں پتا ہے, تم خوب جانتے ہو, تمہیں پتا ہے یہود مدینہ کہ تمہارے سے پہلے جن لوگوں نے کتاب کو کھیل بنایا تھا ان کا کیا حال ہوا۔ اللہ اکبر, اللہ ہمیں معاف کر دینا, ہم نے تیری کتاب کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا۔ آئے دن آپ دیکھ لیں, کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی جس کا آپ کو فتویٰ نہ مل جائے, ہر ایک چیز کو جائز بنا دیا ہوا, کوئی چیز ایسی نہیں, کوئی آپ مجھے ایک حکم بھی لا دیں کہ جس کا, ہر ایک لوگ جاتے ہیں فتویٰ شاپنگ کے لیے, فتویٰ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں کہ جائیں جہاں جہاں سے ہماری مطابق کا فتویٰ مل رہا ہو وہاں سے لے آئیں۔ آپ یہاں پہ ابھی کھول دیں کوسچن آنسر, کھول دیں ذرا, پھر دیکھیں لوگوں کے کوسچن آنسر, سو سو سال سے اس ملک میں رہ رہے ہیں اور ابھی بھی بیسکس پوچھ رہے ہیں, یہ کھانا حلال ہے کہ حرام ہے, جو غیر ذبیحہ ہوتا ہے, کریڈٹ کارڈ یوز کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے, یہاں پہ ایسے کرنا چاہیے نہیں, یعنی آج تک تم کیا کر رہے تھے؟ پھر اس مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے, پرابلم کیا ہوتی ہے, یہ چاہتے ہیں کہیں سے ہمیں ہماری مرضی کا فتویٰ مل جائے اور ہم پھر کہہ سکیں کہ دیکھو اس نے کہا تھا نا اس لیے ہم نے یہ کرا۔ تو ہم نے کھیل بنا لیا دین کو بھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا یہود مدینہ کو کہ دیکھو کھیل بنانے والوں کا, اللہ کے حکم ایسے نہیں ہے کہ تم ان کو کھیل بناؤ, تمہیں پتہ ہے سبت والوں کا حال کہ ان کے ساتھ کیا حال ہوا تھا, آج تم بھی اللہ کی کتاب کے احکامات کو کھیل بنا رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف واضح آیتیں ہیں اور تم ان کو توڑ مروڑ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ تو نہیں عربوں کے لیے آئے ہیں اور یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے اور یہ ایسے ہیں, کیونکہ یہ واقعہ ان میں مشہور تھا, بڑی اچھی طرح یہ جانتے تھے یہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہوا, عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی ہزار سال پہلے کا یہ واقعہ تھا۔ अस्तग़फ़िरुल्लाहि रब्बी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने इबरत बना दिया उनके लिए और मौज़ा बना दिया लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए जो तकवा वाले हैं ना उनके लिए नसीहत बना दिया इस वाक़े को। तो क्यों उन कहा मौज़ा और नकाल में क्या फर्क है? उनके लिए आगे और पीछे वालों के लिए नकाल बनाया और मुत्तकीन के लिए मौज़ा बनाया, सबके लिए क्यों नहीं नकाल बना दिया या सबके लिए मौज़ा क्यों नहीं बना दी? बताएं क्या फर्क है नकाल और मौज़ा में? सोचे कोई बात आपके जहन में आती हो, अलग अलग क्यों कहा गया, एक क्यों नहीं कह दिया गया? इसलिए कि देखें ऐसे ही इन दोनों में फर्क है जैसे दवा और गिजा में फर्क है। एक मेडिसिन होती है वो किसके लिए होती है? बीमार के लिए ना। और गिजा किसके लिए होती है? जो सेहतमंद होता है। दोनों ही जरूरी है ना। बीमार के लिए दवा जरूरी है, इसी तरह नकाल जरूरी है उन सब के लिए जो कोई ना कोई गलत काम करते हो और ऐसे काम की तरफ उनका रुझान हो। और मौईज़ा वज़ा की तरह ये मुत्तकी जो ऑलरेडी अल्लाह का खौफ रखते हैं, ऑलरेडी उनमें अल्लाह का खौफ है, वो बीमार नहीं है, उनके पास सेहत है, लेकिन निकाल उनके लिए बना दिया कि तुम्हारे लिए इबरत है, देख लो पहले उनके साथ ऐसे हुआ था, तुम सीधे हो जाओ, अपनी बीमारी को दूर कर लो। और मौईज़ा इनके लिए है, यानी नसीहत इनके लिए कि देखो तुम कभी सोचना भी ना, तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ तो है, खौफ और बढ़ जाता है, और ज्यादा खौफ बढ़ गया उनके अंदर कि अल्लाह पहले लोगों के साथ ऐसे हुआ था, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी की तरफ का सोचें भी, समझे ना। तो दोनों में फर्क है, हर एक के लिए मौईज़ा नहीं है क्योंकि हर एक मुत्तकी नहीं है, बाकियों के लिए इबरत है, इबरत का सामान कि सबक सीख लो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकलमंद वो है कि जो दूसरे के वाक़े से इबरत ले ले, इससे पहले कि तुम्हारे ऊपर खुद कोई हालात आए उससे बेहतर है किसी और के साथ कोई काम होता है, कोई बात होती है ना, तो हमें चाहिए कि हम उससे इबरत ले लें कि अल्लाह डर जाए हम कि अल्लाह हम ना हमसे कोई ऐसी बात ना हो जाए कि हमारे ऊपर ये चीज़ आ जाए। बेवकूफ़ वो है जो इंतजार करता रहे ना कि अपने ऊपर ही कोई आएगी तो फिर ही वो सीधा होगा, फिर तो इंसान ने सीधा होना ही है। अगर आप अकलमंद हैं तो दूसरे की किसी वाक्य से नसीहत ले लें। अस्तग़फ़िरुल्लाहि रब्बी। यहां तक तिलावत सुनिए, फिर आगे तीसरा वाक्य इंशाअल्लाह ताला देखते हैं।
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين